राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। आप सबका मिलानुहाय सूरत में आज तीसरे दिन के प्रातः काल रविवार के चौथे सत्संग के सत्र में भागवत के पांचवां स्कंद महाराज भरत के चरित्र के श्रवण में स्वागत है। महाराज भरत भगवान ऋषभदेव का पुत्र, जिसके नाम से इस पूरे पृथ्वी का नाम भारतवर्ष हुआ, इनके चरित्र का वर्णन पांचवें स्कंद श्रीमद् भागवत के सात अध्यायों में है। सातवें अध्याय से लेकर तेरहवें अध्याय तक पहले महाराज भरत के शिक्षा ग्रहण करने का वर्णन अपने पिताजी भगवान ऋषभदेव से क्या शिक्षा उन्होंने ग्रहण की, उस शिक्षा के अनुसार उन्होंने कैसे अपना राज शासन सुचारू रूप से चला के अपनी प्रजा को पुत्र समान समझा, और फिर राजपाट का परित्याग करके पुलह आश्रम, पुलह ऋषि का नाम है, पुलस्त और पुलह ये ऋषि हैं जो ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए थे, वो ऋषि हैं ये। उनके आश्रम में गंडकी के किनारे के ऊपर जहां सालंगराम भगवान का प्रकट्य होता है वहां जाके तपस्या करने लगे, लेकिन उस तपस्या के अंतर्गत एक छोटे से हिरण के बच्चे को अनाथ देखकर उसमें दया की वृत्ति के कारण आसक्ति उत्पन्न हो गई और भगवान के भजन साधन में विघ्न पड़ गया, और अंत समय उस हिरण का चिंतन करते हुए हिरण के बच्चे का प्राण निकल गए, और दूसरे जन्म में वो महाराज भरत एक हिरण बने। वो कालिंग पर्वत के वहां उसका जन्म हुआ, लेकिन वो माता को वहां छोड़ के वापस पुला आश्रम में आ गए जहां पहले वो तपस्या करते थे, और हिरण के शरीर में भी उनको अपने पूर्व जन्म की सारी भक्ति का स्मृति था। हिरण का शरीर समय आने के ऊपर त्याग कर और ब्राह्मण के घर में छोटी पत्नी के द्वारा पुत्र के रूप में प्रकट हुए, तो एक बड़ी पत्नी भी थी और भी संतान था। ब्राह्मण ने शिक्षा देने का प्रयास किया, लेकिन इस तीसरे जन्म में राजा भरत हिरण और फिर दोबारा ब्राह्मण भरत, इस जन्म में महाराज भरत ने विचार किया कि अब मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। एक बार छोटी सी त्रुटि के कारण मैं बहुमूल्य मानव जन्म से चूक चुका हूं, तो अब ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। तो गलती से बचने का साधन क्या है? महाराज ब्राह्मण भरत ने यह साधन निकाला कि बंधन संसार के कारण होता है, इसलिए गलती होती है ना, तो संसार से संबंध ही नहीं रखना है। जो बंधन का कारण है उससे ही मुक्त हो जाना ठीक है, तो इसलिए वो कैसे जी रहे थे, जैसे जड़ कोई रहा, जड़ जी रहा हो। जड़ का मतलब मानो गाड़ी है आपकी, गाड़ी जड़ ही है ना, गाड़ी जड़ है। आप 25 लाख रुपए दे के बड़ी अच्छी कंपनी की गाड़ी लेके आओ, आप चढ़ के जाओ, समझो आपकी है, लेकिन गाड़ी को तो आपसे कोई आसक्ति नहीं है ना। गाड़ी के ऊपर कुत्ता आगे मूतेगा तो गाड़ी थोड़ी कहेगी सेठ मेरे को अभी अभी लाया है, तुम कहां मूत रहा है मेरे ऊपर, बोलेगी क्या? नहीं बोलेगी ना। तो गाड़ी को आपसे तो कोई आसक्ति नहीं है, और किसी को बेच के दे दो और किसी चोर को दे दो उसके अंदर वो चर्च जाके बेचे तो गाड़ी थोड़ी कहेगी कि मुझे क्यों ऐसे ले। तो जड़ी है ना, उसको तो कोई फीलिंग है नहीं। तो जड़ का मतलब है किसी में कोई आसक्ति नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं। भाई भला आदमी घर को ले ले तो भी ठीक है, बुरा आदमी ले तो घर थोड़ी उसे कहेगा मुझे क्यों तुम ले रहे हो। तो जड़ का अर्थ ये होता है जो किसी में न आसक्ति करे और न किसी से द्वेष करे, जो जैसे चलाए वैसे चले। तो इसलिए उनका नाम हो गया जड़ भरत। जड़वत जो जीवन बिताए वो जड़ भरत। पिताजी के देहांत के ऊपर माताजी तो उनके साथ सती हो गई, पहले माताजियां सती हुआ करती थी, पत्नी सती हुआ करती थी पति के साथ, क्योंकि पति नहीं रहा तो संसार में रहे किसके लिए, तो उसको सती कहते थे। तो पत्नी माता तो सती हो गई, लेकिन दूसरी माता ने जो स्टेप मदर थी, मौसी थी, उसने देखा ये काम किसी का नहीं है और केवल खाने का ही काम करता है, तो इसका तो बहुत बड़ा हमारे ऊपर बोझ है। हमको भी लोग संसार में बोझ समझते हैं ज्यादातर, कहते हैं कुछ करते नहीं है ये साधु लोग, खा पी के शरीर मोटा करके घूमते रहते हैं, ये समाज के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। ये इससे इसे संकेत मिलता है, वो माँ कह रही है कि ये घर में बैठा हुआ हमारे पास बोझ है, जबकि उस माँ को ये पता नहीं है कि जिस देश में वो रह रही है इस देश का ये राजा रह चुका है, इस देश का ये राजा रह चुका है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो ऐसे जी रहा है, उसको वो समझ रही है कि हमारे ऊपर भोजन का बोझ है। ये सच कह रहा हूं मैं, कभी इस प्रसंग के ऊपर हम कहीं सुना था, कई बार हमने कहा भी होगा। हमको लोग जब ऐसे कहते हैं तब उनको हम उत्तर ये देते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बजट किसकी होती है, किसके ऊपर खर्चा सबसे ज्यादा होता है देश का, सो आर्मी के ऊपर, और हमारी आर्मी के ऊपर हमारे देश ने गत 20 साल में जो खर्चा किया है एक भी लड़ाई नहीं हुई है, लोग रिटायर हो गए। जो मानो 80 में भर्ती हुआ, 2000 में रिटायर भी हुआ, 2005 में रिटायर भी हुआ, कितना उसके ऊपर गवर्नमेंट ने खर्चा किया, एक दिन भी उसने कहीं लड़ाई की क्या? फिर क्या कहोगे, मुफ्त का सरकार का खाया, यही कहेंगे और क्या कहेंगे? क्या किया उसने, जिस काम के लिए उसको रखा था वो तो काम उसने एक दिन भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उसके ऊपर खर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर लड़ाई हो जाए और सीमा की सुरक्षा की जरूरत पड़े तो सीने के ऊपर गोली वो खाता है, हम घर में सोए रहते हैं, इसलिए उसके ऊपर खर्चा करते हैं कि समय आने के ऊपर सीने के ऊपर गोली वो खाता है, हम घर में सोए रहते हैं। ठीक ऐसे ही जब संस्कृति की सुरक्षा की आवश्यकता होती है तो ये साधु घर बार छोड़ के गली गली में जाकर गा गा कर लोगों को जगाते हैं जो अज्ञानता की नींद में सोए रहते हैं, इसके ऊपर उनके ऊपर खर्चा करना व्यर्थ नहीं जाता है, वो संस्कृति की सुरक्षा करते हैं, और सैनिक सीमा की सुरक्षा करता है। सीमा की सुरक्षा और संस्कृति की सुरक्षा दोनों की आवश्यकता है, संस्कृति की सुरक्षा ब्राह्मण का काम है और सीमा की सुरक्षा क्षत्रिय का काम है, और दोनों के ऊपर खर्चा करना आवश्यक है, नहीं तो संस्कृति का सत्यानाश हो जाएगा। कौन संस्कृति की रक्षा करता है? कौन अपना घर बार छोड़ के, दुकान छोड़ के, मकान छोड़ के, परिवार छोड़ के महीनों के महीने घूमते रहते हैं? क्यों घूमते रहते हैं? एक घंटा बच्चा आपका ट्यूशन पे जाता है, कितना पैसा देते हो? यहां आप रोज आ रहे हो, मुफ्त की ट्यूशन हम आपको दे रहे हैं, कुछ ले रहे हैं आपसे? नहीं ले रहे हैं ना, प्रसाद भी खिला रहे हैं ना। तो ये सब परिवार घर अपना छोड़ के आए हैं ना, तो ये संस्कृति की शिक्षा देने के लिए, शास्त्र की शिक्षा, सदाचार की शिक्षा देना, ये भी तो एक कर्तव्य है, एक धर्म का काम करना है ना, तो ये इसकी आवश्यकता है, अपनी जगह पे ये आवश्यकता है। और जल भारत की ये आवश्यकता आपको तब मालूम पड़ेगी जब उस समय के राजा को उपदेश दिया, केवल एक राजा सुधर गया तो पूरा देश सुधर गया, मूर्खों से बात नहीं की, लेकिन एक राजा का जब समय आया तो उसको बात करके समझा दिया और शिक्षा दे दी, तो क्या वो रोटी में महंगा था क्या? मां बाप को जो राजा का गुरु हो सकता है वो आपके घर में आपके लिए महंगा पड़ेगा क्या? जड़भत के चरित्र से बहुत बड़ा सुंदर दृष्टांत मिलता है कि लोग कभी कभी ऐसे समझते हैं कि हमारे लिए भोजन का बोझ है, और वहां जला हुआ ही उसको खिलाया और कहा कि जाके खेत की देखभाल करो, लेकिन वो तो खेत में खाने वाले को बोले आओ खाओ, भगवान का माल है, हम क्यों तुमको रोकेंगे? तो एक दिन ऐसे बैठा हुआ था खेत में, पड़ोस में कोई डाकुओं का कबीला रहता था, उनको बलि चढ़ानी थी देवी काली को आदमी की। अब ऐसे बलि चढ़ाने के लिए ही भगवान का भक्ति मुफ्त में मिलता है और कोई हाथ नहीं आता, हैं, कहते कुर्बानी का बकरा कौन बलेगा। आपको हमने एक बार कथा बताई थी, ये एक बच्चा नौजवान छोटी उम्र का सत्संग में जाने लगा, सत्संग में उसका इतना मन लगने लगा कि घर वाले परेशान हो गए कि कहीं साधु ना हो जाए, बड़े दुखी हो गए, क्या करना चाहिए, सत्संग से बचाने का क्या साधन है, सत्संग के बचाने का एक ही साधन है कि इसकी शादी करा दो। ये संसार में बहुत बड़ी पुरानी प्रचलित प्रक्रिया है, क्योंकि वहां बंधन में पड़ गया तो भगवान भूल जाएगा, इसका मतलब भगवान को भुलाने का सबसे अच्छा तरीका है शादी करना। ये साफ ये कहेगा ना, ये जड़भर शिक्षा देगा। रघुनाथ दास गोस्वामी को भी जबरदस्ती उसे माता पिता ने शादी की, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के पास जा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी वो जब जाने लगे तो उसकी मां ने कहा इसको बांध के रखो, तो उसका पिता कहता है जिसको अप्सरा के समान स्त्री और इंद्र के समान राज नहीं बांध सकता उसको रस्सी क्या बांधेगी। बांधने के लिए दुनिया में सबसे बड़ा है धन, वैभव और स्त्री, ये दोनों जिसको न बांध सके उसको हम रस्सी से कैसे बांध सकते हैं। तो इस बच्चे का विवाह कर दिया, बच्चा सत्संग में रोज आता था, अब हफ्ते में एक दिन आने लगा। तो मन में तो उसको कहना पुलाह पचाने लगा, अब मेरा विवाह होगा, फिर घर लेना पड़ेगा, फिर ऐसे विचार चलता रहा। तो महाराज ने पूछा बेटा सत्संग में रोज नहीं आते, बोला महाराज मेरा मंगनी हो गया। बोला बेटा तुम अब हमसे गए, हमारे काम के नहीं हो। फिर शादी करा दी, हफ्ते हफ्ते जाता है फिर भी टाइम खराब करता है। तो शादी जब बच्चे की हो गई तो महीने के बाद आया, अरे बेटा पहले तो हफ्ते में आता था, महीना लगा दिया। महाराज मेरी शादी हो गई। बोला बेटा अभी तो माँ बाप से गया, उनके काम का भी नहीं रहा। फिर भी महीने महीने आता था, एक बार तो छह महीने के बाद आया। ये बेटा तुमको क्या हो गया। बोला मेरे को बेटा हो गया। बोला बेटा तुम अपने आप से भी गया। अब तुम इसकी बस तीमादारी करते रहना, टीके लगाने के लिए अस्पताल भागना, स्कूल में दाखला करना, लेने जाना छोड़ने जाना, अब तो अपने आप से भी गया। बोला नहीं महाराज, मेरी पत्नी बहुत प्रेम करती है, बच्चा तो मैं जाता हूं तो रोता है पीछे, मेरे को चिपक जाता है। महाराज ने कहा तुम्हें देखना है कि तुमसे प्रेम कौन करता है। बोला महाराज क्या कहते हैं। बोला पुड़िया है, जाओ खाओ और सो जाओ, लगेगा कि तुम्हारे प्राण निकल गए हैं और फिर तुम देखना सब। ये पुड़िया ले गया, जाके खाई तो घर वालों ने सुबह जगाया, जग नहीं रहा है, रोने लगे। पिता क्या हो गया, माँ रोए मेरा बेटा गया, पिता रोए मेरा बेटा गया, पत्नी कहे मेरे पति गया, छोटा बच्चा रोए, अरे रोदन पड़ा हो रहा है बहुत ज्यादा इतनी देर में। महाराज जी आए गुरु जी घर में, गुरु जी को देख के रोने लगे। बोला पिता, पिताजी कहता है आपके पास आता था अच्छा था, हमने इसको संसार में फंसा दिया, आपसे हमसे भी गया आपसे भी गया, अब तो सच कह रहे हैं, जब नहीं रहा तब सच कह रहे हैं, आदमी जब नहीं रहता है तब सच कहते हैं, बाद में सच कह रहे हैं कि अभी तो महाराज। महाराज ने कहा मेरे को एक विद्या आती है, उसकी एक पुड़िया है मेरे पास, अगर आप में से कोई भी खा लेगा तो आपकी तो जान चली जाएगी लेकिन बच्चा उठ जाएगा। और पिताजी को कहा देखो आप 80 साल के हो, अब आपके तो प्राण किसी वक्त वैसे भी जा सकते हैं, आप ही पुड़िया खा लीजिए बच्चा उठ जाएगा। पिताजी कहता है मरने में मुझे कोई डर नहीं है लेकिन मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी ये दुख मैं नहीं सह सकता। माँ बुढ़िया की तरफ देखा, बुढ़िया के न दांत थे, आंखों के ऊपर दस का चश्मा लगा हुआ था, कानून से बहरी थी, मैया पुड़िया ले लो, पहले पहले तो कहा सुनती ही नहीं हूँ। क्या कहा, गुड़िया ले लो। नहीं नहीं ये पुड़िया ले लो बेटा उठ जाएगा। बोला हाँ बेटे के लिए प्राण दो लेकिन मेरे पति की देखभाल कौन करेगा। पत्नी को कहा तुम तो वैसे भी अभी पति नहीं रहा तो तुम्हारे को सती होना चाहिए, सती होने से तुम ये खाओ बेटा हो, ये तुम्हारा पति जीवित हो बेटे की देखभाल तो करेगा। बोला मैं मरूं फिर पति जिए ना जिए क्या फर्क पड़ेगा। अब गुरु जी कहता है फिर मेरा शिष्य का मैं खा लेता हूँ। सब कहते जय गुरु महाराज की कुर्बानी का बकरा गुरु महाराज महाराज पूरी खाल बस बहुत अच्छा है। महाराज ने पूरी खाई, महाराज तो सो गया, बेटा उठ गया। अब पिताजी कहते हाँ मेरे बेटे है, वो पिताजी को देखता है, उसने सब सुन रहा था, उसने सबकी कथा सुनी थी। फिर गुरु जी उठा कहा बेटा ये संसार ऐसा इतना ही प्रेम है, जब तक है जीता है तब तक का है, उसके बाद का किसी का प्रेम नहीं है। शरीर छोड़ने के बाद प्रेम करने वाला आत्मा से जो है वो तो उसके उधार वाला केवल गुरुजन होते हैं और कोई नहीं होता है संसार में। तो जड़ भरत को कुर्बानी का बकरा बना के डाकू ले गए, जाके स्नान कराया, बैठा चुप करके आराम से, न हिले न जुले, भले करा लो, बड़े सुंदर कपड़े पहनाए बैठा था, भोजन कराया जो दिया खा लिया, फिर पकड़ के काली के सामने ले जाके गर्दन नीचे गया, गर्दन नीचे कर दिया। उसको तो कोई भय था नहीं, शरीर से तो ऊपर के स्तर के ऊपर था, लेकिन वो जब अपना तलवार निकाल के गर्दन काटे लगा तब देवी ने देखा ये तो भगवान का मान भक्त है और ये मेरे जो चेले हैं ये बदमाश हैं। देवी को मालूम है कि मेरे चेले सारे बदमाश होते हैं, वो जानती है, सीधा दिखता है कि काम क्या करते हैं, डाकू हैं और मेरे को आगे रोज चढ़ा के जाते हैं। क्या चढ़ा के जाते हैं? बकरे का सर, अपना सर तो कभी नहीं चढ़ाया है, और दूसरे का लेके आए, कौन सा मेरा ये भक्त है? प्यारे से प्यारी चीज चढ़ानी चाहिए, प्यारे से प्यारी चाहिए तो अपना सर है, वो तो चढ़ाते नहीं है, बकरे का सर चढ़ाते। उनको मालूम है कि भगवान का भक्त है। अब देवी की मूर्ति से साक्षात देवी प्रकट होकर उसी के हाथ से उसी की तलवार लेके उस डाकू को और सारे डाकुओं के खानदान को ही समाप्त कर दिया। तो यहां शिक्षा क्या मिल रही है कि देवता भगवान के भक्त की रक्षा करते हैं और अपने भक्त का स्वयं अपने हाथों से नाश करता है अगर वो भगवान के भक्त का अपराध करते हैं। तो देवता भी भगवान के भक्त की रक्षा करने के लिए अपने आप को बहुत गौरव होता है उनको कि हम बहुत बड़ा भगवान की सेवा का कार्य कर रहे हैं, भगवान के भक्त की रक्षा करनी है। वो डाकू तो जो इंसान की बलि देगा वो तो बहुत बड़ा भक्त होगा ना देवी का, साधारण तो नहीं होगा, लेकिन उसी का गर्दन काट दिया देवी माँ ने। वैसे भी देवी इस पूरे जगत की अधिष्ठात्री देवी है और ये जगत जेल खाना है और वो जेल खाने की जेल सुपरिटेंडेंट है। तो हम जेल अगर कोई आदमी जेल में हो और जेल सुपरिटेंडेंट को जाके ये कहे कि इस जेल के अंदर मेरे को कमरे में एसी लगा दो, हमारे को इस जेल के अंदर अच्छे भोजन की व्यवस्था कर दो, ये बुद्धिमानी है? या ये जाकर कहे कि कृपा करके मुझे जेल से मुक्त कर दो, दोनों में से अच्छी कौन सी बात है? हाँ भाई आप बताओ, जेल के अंदर बंद आदमी, जेल के मालिक उसको मिल जाए, जेल का सुपरिटेंडेंट मिल जाए अथवा जिसको कहा जाता है प्रिजन मिनिस्टर मिल जाए, तो उससे क्या मांगना चाहिए? जेल की सुविधा मांगना चाहिए, जेल से बाहर निकलना मांगना चाहिए? तो जो बाहर निकलना मांगता है वो बुद्धिमान है। हम क्या करते हैं जाके देवी के पास क्या मांगते हैं? हमारे को घर दे दो, दुकान दे दो, मकान दे दो, यही मांगते हैं। मतलब जेल के अंदर हमारे को सुविधा दे दो ना, जेल से बाहर निकलने के लिए तो कुछ नहीं मांगते ना, तो बुद्धिमानी तो नहीं हुई ना। यहां जड़ भरत को तो कुछ हुआ नहीं, वापस लौट के आ गया और देवी उस अपनी मूर्ति से निकली। तो ये दूसरा सिद्धांत है कि मूर्ति जो होती है वो साधारण मूर्ति नहीं होती है, कोई साधु होता है तो उस मूर्ति को प्रकट कर सकता है। मूर्ति के अंदर से भगवान को प्रकट करने का सामर्थ्य केवल भगवान के भक्त में, ये बात समझ में आ रही है आपको? पूजा तो कब से कर रहा था वो डाकू, कभी निकली थी क्या देवी बाहर? नहीं निकली ना। आज भक्त केवल वहां पूजा करने भी नहीं गया था, कुर्बानी का बकरा बन के गया था, लेकिन उसके लिए देवी मूर्ति से निकली कि नहीं निकली? तो इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि मूर्ति पत्थर है मूर्ख के लिए, लेकिन भगवान का भक्त उस मूर्ति को प्रकट कर सकता है। उस मूर्ति से भगवान साक्षात प्रकट होते हैं, किसके लिए? केवल भक्त के लिए। मंदिर में जाइए, 100 मंदिर है, अंदर चले जाइए, जाके घूम के अंदर से आ जाइए, भगवान तो किसी को दिखाई नहीं देता। भगवान को देखने के लिए साधु से सुनना पड़ेगा, भगवान के लिए देखने के लिए कान है, भगवान को आंख नहीं है। अगर मंदिर में साधु नहीं है, सत्संग नहीं है, तो वहां से किसी को कोई विशेष लाभ हो इसकी संभावना नहीं है। अस्पताल हो, एक्सरे भी हो, ऑपरेशन थिएटर भी हो, डॉक्टर नहीं हो तो मरीज को कोई लाभ होगा क्या? नहीं होगा ना। ऐसे भगवान का बहुत सुंदर मंदिर हो लेकिन साधु उसमें नहीं हो, संत नहीं हो, सत्संग करने वाला नहीं हो, मर्यादा वाला आदमी नहीं हो तो वहां जाने का लाभ किसी को नहीं होता। भगवान को प्रकट साधु ही कर सकता है, वैसे भगवान का प्रकट है। तो यहां देवी को, भगवान को क्या, देवता को प्रकट ही भगवान के भक्त ने किया। अब दूसरा प्रसंग आगे आता है, महाराज जड़ भर तो ऐसे ही बैठे हैं, जड़ भर सिंधु और सुवेर देश का राजा महाराज रहुगण जा रहा है गंगा सागर। गंगा सागर के तीर्थ को एक बार करते हैं, कहते हैं बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो जहां गंगा जाके समुद्र में मिलती है उसको गंगा सागर कहते हैं। तो उस तीर्थ का अभी मेला कल 14 जनवरी को गंगा सागर में बहुत बड़ा मेला लगता है। जनवरी की ठंड में वहां लाखों लोग नहाने जाते हैं और रहते हैं वहां जाकर, और दिल खोल के लोग सब लोगों के लिए भंडारे चलाते हैं, प्रसाद चलाते रहते हैं। मकर संक्रांति का बहुत बड़ा मेला प्रतिवर्ष लगता है, आपकी संस्था स्कान का वहां बहुत बड़ा सेवा का शिविर लगता है, प्रसाद वितरण होता है लाखों लोगों को। तो ये भागीरथ की स्मृति में कि वो गंगा को पृथ्वी के ऊपर लाया और उसी स्थान के ऊपर गंगा को भागीरथ ले गया था, क्योंकि वहां कपिल देव का आश्रम है और कपिल देव के आश्रम में भागीरथ के दादा तीन पीढ़ी पीछे 60,000 सगर के पुत्र कपिल के तप से भस्म हो गए थे। उनके उद्धार के लिए गंगा को तीन पीढ़ियों के परिश्रम से गंगा पृथ्वी के ऊपर आई। अंशुमान दिलीप भागीरथ, अंशुमान सगर का पोता, उसने तपस्या की, फिर दिलीप ने की, फिर भागीरथ ने की, तब गंगा आई। तो उसकी स्मृति में ये मेला अभी कपिल आश्रम में लगता है आज भी। वही कपिल देव जिसने देवहूति को शिक्षा दी थी, वो कपिल देव आज भी गंगा सागर में सिद्ध के रूप में रहते हैं, दिखते नहीं है किसी को, लेकिन आज भी कपिल देव गंगा सागर में विराजमान है। तो महाराज राजा महाराजा पहले कारवार नहीं थी, पहले जाते थे पालकियों में जाते थे, चार पालकी को उठाने वाले थे। तो महाराज की पालकी जा रही थी, एक उठाने वाला बीच में बीमार हो गया, तो महाराज की पालकी को उठाने के लिए कोई आदमी ढूंढ रहे थे। वो ये आदमी मिल गया, कौन, बैठा हुआ जड़ भर्त, शरीर में मोटा तकड़ा था, और देखा कि चलो कुछ कर भी नहीं जाए, बैठा है, उठाओ पालकी। ना नहीं किया, उठाई पालकी, लेकिन पालकी उठा के चलते समय नीचे नजर रखे, वो चींटी दिख दे तो पांव रोक दे, इसका पांव रुक गया, तीन का पांव चल गया। तो राजा को ऊपर ऐसे झटका आया, कभी आप में से कोई पालकी में चढ़ा है? हा? जो पालकी में चढ़े हैं वो ऊपर हाथ करो। तो कहां चढ़े हैं आप लोग? अमरनाथ में चार आदमी पालकी उठाते हैं ना, वो चार चलते हैं, उनके पांव को चल, वो घोड़े की तरह चलता है पांव, एक दूसरे के साथ एक पांव के साथ पांव मिलेगा, एक का पांव भी थोड़ा टेढ़ा हो गया ना तो ऊपर वाला अगर जाता है गंगोत्री जमुनोत्री के रास्ते में कहीं होगा ना तो देखेगा नीचे का, अभी मैं नीचे गया, पांव उसका हिला और माथा उसका हिलता है ना। हमने पालकी में चढ़ के देखा है, अनुभव किया है। हम पालकी में चढ़ने को बोलते हैं एक जन्म लेना, चार आदमी से अपने आप को उठा के जाना मरने के बराबर है। हमने बोला फिर पता नहीं कभी दोबारा जन्म लेना पड़े, अच्छा है दो बार मर के देख लेते हैं, चार आदमी बाद में उठाएंगे हमें सही पता लगेगा कि ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, अभी उठवा लो हमको। हम गए थे वो गंगो कहाँ केदारनाथ चढ़ के गए थे 14 किलोमीटर, लेकिन हमारे को उठाने वाले चार से काम चलने का नहीं था, इसलिए उसका पांव फिसलना जरूरी था और फिसला, और वो उसका पांव फिसला नहीं, फिसले जमुनोत्री में नहीं फिसला, वहां हमने चार के बजाय आठ किए थे। हाँ डबल किए थे, डबल तो सीधी सी बात है, एक थक जाए तो जल्दी कंधा बदलते हैं, और वहां वो लड़के अच्छे थे, काम उन्होंने ठीक कर लिया।
लेकिन ये लालची थे, बोला हम चार काम चला लेंगे। अरे नहीं भाई, नहीं पैसा डबल देना, काम चार चलाएंगे। मैंने आप चार काम चलाएंगे लेकिन टांग पकड़ के सात जन बैठे रहोगे। तो अनुभव ये हुआ कि एक आदमी का पांव फिसला तो ऊपर वाले आदमी को, तो महाराज राहुगण तो कह रहे ये मूर्ख कौन है, मेरी पालकी क्यों हिल रही है। तो तीन बोलते सर सर हम तो बिल्कुल ट्रेन है, हमारा पांव एक, ये जो नया आया इसको बिल्कुल चलना नहीं आता, बिल्कुल अनाड़ी। ठीक चलो फिर वैसी। अब तो महाराज राहुगण ने बोला तुम दुबले पतले हो, थक गए हो, चल नहीं सकते हो, खाते नहीं हो, एक ऐसे टॉन्ट करने लगा जड़ भर्थ के ऊपर, मैं तेरे को सजा दे दूंगा अगर ऐसे तुम चले, तुम नहीं चलोगे तो राजा हूं, जानते नहीं हो मैं कौन हूं, ठीक चले पालकी चलाओ। अब पहली बार जड़ भर्थ ने मुंह खोला, पहली बार मुंह खोल के कहा आप ठीक कह रहे हैं, मैं नहीं उठा रहा हूं आपकी पालकी, ये शरीर उठा रहा है, ये शरीर थका होगा, मैं नहीं थकता हूं, मैं आत्मा हूं, ये शरीर है तुम्हारा जिसको तुम दुबला पतला मानते हो, ये शरीर है जो थकता है, ये शरीर है जो दुख सुख सहता है, मैं तो आत्मा हूं, इससे अलग हूं, मुझे क्या पता, ये तो शरीर को तुम बोल रहे हो, मैं तो इसको जानता भी नहीं हूं, इसको तुम क्या कह रहे हो। महाराज जहां तो तीर्थ यात्रा पे रहा था इसका मतलब आध्यात्मिकता, तो उसको आध्यात्मिक दृष्टि से तो जा ही रहा था, और यहां रास्ते में ही उसको वो सत्संग मिल रहा था जिसको वो गंगा सागर सुनने जा रहा था, एकदम महाराज पालकी से नीचे उतरा। आप तो बहुत बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, आप कपिल देव हैं क्या, क्योंकि उसके दिमाग के ऊपर तो कपिल देव ही था कि कपिल देव के आश्रम में जा रहा था, लिखा है भागवत में कि आप कपिल देव हैं क्या, ऐसी कौन ज्ञान की बातें। और ये तो मेरे को, मैं हमेशा पालकी में जाता हूं, चार आदमी उठाते, ये तो केवल भोजन खाना जानते हैं, बोलना तो जानते ही नहीं है, आप तो आज तो वेदों की बात बोलने कौन है। जड़ भर्त अभी चुप करके खड़ा है, महाराज रघुगण एकदम सोचा कि मेरे से अपराध हो गया। महाराज रघुगण कहता है शंकर के हाथ में त्रिशूल है उससे भी मुझे डर नहीं लगता है, इंद्र के वज्र से भी मुझे भय नहीं लगता है, लेकिन ब्राह्मण के शराब से मुझे भय लगता है, मैंने आपका अपराध कर दिया है, और मैं आपसे क्षमा याचना मांगता हूं कि मैंने आपको पहचाना नहीं, इसलिए मुझसे आपका अपराध हो गया है, मेरे को आप क्षमा कीजिए। महाराज रघुगण तीन और कहारों के सामने एक और पालकी उठाने वाले को प्रणाम करके ये प्रार्थना कर रहा है, ये थोड़ा दृश्य को देखने का प्रयास करो कि एक राजा है, तीन उसके नौकर है, उसके सामने एक नौकर के समान पकड़े हुए के सामने पांव पकड़ के प्रार्थना कर रहा है, तो राजा में योग्यता थी कि नहीं थी, या राजा के अंदर आध्यात्मिक दृष्टि से योग्यता थी, निम्रता थी, और वो सत्य पात्र था, इसलिए बोला जड़ भर्थ, नहीं तो मूर्खों से नहीं बोला, डाकू से तो नहीं बोला, पकड़ के बलि चढ़ाने गए, उनको डर नहीं था, किसको, शरीर को ही काटने जा रहे हैं ना, मुझे शरीर से क्या लेना है, कई बार ये शरीर आया गया, लेकिन आज उपदेश देने के लिए सत्य पात्र मिला, तो जड़ भर्थ ने मुख खोला। अब रघुगण महाराज कहते हैं मुझे शिक्षा दीजिए, मैं इसी के लिए तो जा रहा हूं तीर्थ यात्राओं के, कोई साधु मिलेगा मेरा जन्म सफल होगा, आप तो मेरे को यही मिल गए हैं, आप मुझे बताइए। तब जड़ भर शिक्षा देते हुए कहते हैं संसार के अंदर कोई अपने आप को राजा मानता है, कोई अपने आप को नौकर मानता है, ये सदा के लिए रहने वाले तो नहीं है उपाधियां, सदा कोई राजा तो नहीं रह सकता ना, सदा कोई नौकर भी नहीं रहता है, ये तो प्रकृति के सारे नेम है, तीन गुणों के अंतर्गत कभी कोई ऊपर उठता है, कभी कोई नीचे उठता है, ये तो प्रवाह संसार का ऐसे ही चल रहा है। कभी भी रघुगण कहता है मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं, बोला मैं ठीक कह रहा हूं, तुम राजा जिस चीज के बने हुए हो, तुम्हारे उठाने वाले भी उसी चीज के बने हुए हैं ना, मिट्टी के, क्या कि तुम कोई सोने के बने हुए हो क्या। अब उनको सीधी तरह समझा रहे हैं, फिर राजा का शरीर और एक नौकर के शरीर की बनावट में कोई फर्क है क्या, भगवान ने दोनों में कोई अंतर रखा है क्या बनाने में, नहीं ना, एक चीज से बना हुआ है दोनों, फिर तुम अपने आप को मालिक बन समझ रहे हो, इनको नौकर समझ रहे हो, बने हुए एक चीज के, और इनको कोई तनख्वाह भी नहीं देते हो और डांट के चला रहे हो, तुम कहां इसकी रक्षा कर रहे हो? तुम तो अपराधी हो, प्रजा का शोषण कर रहे हो। और ये रहुगण को, राजा महाराज रहुगण को बता रहा है, जड़ भारतीय। अब रहुगण महाराज का अज्ञानता मिटने लगी, तब ये शिक्षा देते हुए तीन चार बहुत महत्वपूर्ण श्लोक जड़ भरत बोलता है। जा रहा था कहां, तीर्थ यात्रा करने, उधर जाके क्या करता, यज्ञ करता, तकलीफ करके तपस्या करता, और जड़ भरत कहता है इससे भगवान नहीं मिलेगा। आइए इस श्लोक को, जड़ भरत के शिक्षा के श्लोक का थोड़ा सा दर्शन कीजिए, पढ़ लीजिए। 5:12, 5:12, 5:12:12। रहु गुणे तत्तपसा न जायाति,
रहु गुणे तपसा न याति,
न च जया निरवपणात् गृहात् वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य, विना महत पाद रजो अभिषेकम्। इसका पढ़ लीजिए अनुवाद हिंदी में।
हे राजा रघुगण, महापुरुषों के चरण कमलों की धूली से संपूर्ण शरीर को स्नान किए बिना परम सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती। ब्रह्मचर्य धारण करने, गृहस्थ जीवन के विधि विधानों के अनुपालन, वानप्रस्थ के रूप में गृह त्याग अथवा शीत ऋतु में जल में घुसे रहने या ग्रीष्म में अग्नि अथवा सूर्य की झुलसा के रूप में पले रहने जैसी कठिन तपस्याओं से परम सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती। परम सत्य को जानने के और भी अनेक साधन है, किंतु परम सत्य उसे ही प्राप्त होता है जिसे महान भक्त का अनुग्रह प्राप्त।
तो ये पहली शिक्षा रहुगण महाराज को जड़ भरत की, क्या भगवान को अगर प्राप्त करना है, परम सत्य को, और उसका प्रेम प्राप्त करना है, तो ये दान यज्ञ तप और ये तुम्हारे ब्रह्मचार्य आदि साधन वो प्राप्त कराने में संभव नहीं है। तो साधन क्या है? महत पद रज अभिषेकम, महात्माओं के चरण धूलि से अपने आप को नहलाना। इसका अर्थ क्या है? ऐसे नहीं करना थोड़ी देर के बाद उठते हुए पकड़ के साधु को उसके चरणों को धोना शुरू कर दो, इससे नारे नहीं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है महात्मा जिस रास्ते पे चलते हैं उसके पीछे चलना। जब जो आदमी आगे चलता है उसके चलने से धूलि उड़ेगी ना, वो धूली उड़ के जब आपके ऊपर पड़ेगी, इसका मतलब पूछे जाओगे तब पड़ेगी ना। कोई गाड़ी आगे से आपसे क्रॉस करके जाती है, धूल उड़ाती है, देखिए आपके ऊपर पड़ती है कि नहीं पड़ती है। कच्चे में कोई गाड़ी आपको क्रॉस करे आगे हो जाए तो धूल उड़ती है कि नहीं उड़ती है? तो महात्मा जिस रास्ते में जाते हैं उसके चरणों से जो धूली उड़ती है, वो उसमें स्नान करने का मतलब उसके पीछे चलना। उसके पीछे चलना मतलब उसकी शिक्षाओं के अनुसार चलना, उसके मार्ग का अनुगामी बनना। महाजन ये न गतस्य पंथ, जिस रास्ते से साधु जाते हैं उस रास्ते के ऊपर चलना, मतलब साधु जैसा अपना जीवन बनाना। तो भक्तों के संग के बगैर, भक्तों के संग में बैठ के उनकी कृपा प्राप्त किए बगैर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो बाकी सब साधन काय के लिए? संसार के सुख के लिए। भगवत प्राप्ति के लिए साधन नहीं है। भगवत प्राप्ति केवल महात्माओं के शरणागत से प्राप्त होती। तो महाराज रहुगण ने कोई पहले के यज्ञ तप नहीं किया होगा, बहुत सारे किए, लेकिन जब तक महात्मा की कृपा नहीं होती है तब तक भगवत प्राप्ति का और कोई साधन है ही नहीं। ब्रह्मांड भ्रमित कोई भाग्यवान जीव, गुरु प्रसाद कृपा पाए भक्ति लता बीज। भगवान की प्रेम भक्ति का बीज वो तो केवल साधु ही दे सकता है, और कहीं से मिलेगा नहीं। भक्ति जन्म आई थे भक्त संगे, केवल भक्तों के संग से भक्ति का जन्म होता है। बाकी दान तप यज्ञ दान उससे भक्तों का संग मिलना संभव हो सकता है, लेकिन भगवान मिलना संभव नहीं। दूसरे श्लोक में आगे उपदेश देते हुए क्या कहते हैं, कौन से साधुओं का संग करना चाहिए। मानो रघुगण ने पूछा, आप कौन से साधुओं का संग कहते हो, हम तो बहुत साधुओं का संग करते हैं, जहां जाते हैं प्रणाम करते हैं, दक्षिणा चढ़ाते हैं, भंडारा करते हैं, तो आप कौन से साधुओं की बात कर रहे हैं। हमारे पास कम साधुओं की कमी तो नहीं है, राजा के पास साधु तो हुआ ही करते होंगे। तब ये दूसरा श्लोक जड़ भर्त कह रहा है, क्या कह रहा है, यत उत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रसुत्यते ग्राम्य कथा विघात निशव्यमाणो अनुदिन्नं मुमुक्षो मतिं सतिं यच्छति वासुदेवे। अनुवाद पढ़ लीजिए।
शुद्ध भक्त कौन है,
कौन है जिसका संग करना चाहिए।
शुद्ध भक्तों की सभा में राजनीति ये समाजशास्त्र जैसे सांसारिक विषयों पर चर्चा कराने का प्रश्न ही नहीं है।
वो ये लाइन कौन सी है, ग्राम्य कथा। वो ग्राम्य कथा नहीं करते, ग्राम्य कथा का मतलब ग्राम गांव को नहीं कहते, ग्राम का मतलब इंद्रियां। वो इंद्रियों के सुख के बारे वाली कथा नहीं करते, वो साधु नहीं है जिसके पास जाके कहे पूछा जाए कि महाराज लॉटरी का नंबर कौन सा लें। बहुत सारे साधु आजकल सबसे ज्यादा कौन से चलते हैं, जो लॉटरी का नंबर बता दे और पैसे निकल आए, ये ग्राम्य कथा हो गई। महाराज कौन सा बिजनेस करें, इस सीजन में लोहे का बिजनेस करें कि अनाज का करें, कौन से में लाभ होगा, ये ग्राम्य कथा हो गई। कौन से साधु के पास ज्यादा, उत्तम श्लोक गुणानुवादन, उत्तम श्लोक भगवान का जो गुणानुवादन करते। ये सुखदेव महाराज को परीक्षित महाराज कहते हैं, आप ऐसे साधु हो। सुखदेव महाराज के लिए परीक्षित महाराज दशम स्कम श्रीमद भागवत में कहते हैं, निवृत्त तुरशय उपगीय मानाय भवौषधि मनोभिरामा। उत्तम श्लोक गुणानुवादन, आप उत्तम श्लोक के गुण अनुवादन करते हैं, इसलिए आप ऐसे संत हैं जो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करके भगवान की भक्ति प्राप्त करा सकते हैं। उत्तम श्लोक गुणानुवादन, जो हरि कथा के अलावा और कुछ नहीं करता है, वो ऐसे साधु का संग करना चाहिए, न कि वो जो संसार के अंदर ग्राम टीवी के ऊपर बैठा हो, टीवी चला है और आपको कह रहा है आपको आशीर्वाद है, आप जाइए आपका कल्याण होगा, तो ग्राम कथा ही तो कर रहा है और क्या कर रहा है। तो साधु के जीवन में ये सब चीजें देखनी चाहिए। एक ऐसे साधु की मैं पढ़ रहा था, वो बहुत बड़े आज से 50 साल पुराने साधु ने लिखा के, एक साधु के पास एक सेठ 5000 रुपया एक दिन चढ़ाया, दूसरे दिन 25000 चढ़ाया, तीसरे दिन 50000 चढ़ाया। साधु को बड़ा अच्छा लगा कि ये तो अच्छा दान देने वाला है, और पांचवें दिन उसने कहा, महाराज आपके पास तो बहुमूल्य कुछ चीजें आती होंगी। बोला हाँ है तो बहुत सारी, लेकिन बोला वो तो मेरे को दे देना, मैं उसका निकाला कर दूंगा आपको, आप तो साधु लोग तो इन चीजों को कहीं बाहर ले जा नहीं सकते हैं। 5-6 लाख रुपए जो भी लोग दे गए थे हीरा जवाहर उसको दे दिए, वो वापस ही नहीं आया, 25000 दे के 5 लाख ले गया। नहीं अच्छे, ये सच्ची कहानी है, लिखी है कि ऐसे बहुत से महात्माओं की ये परेशानी है, पैसे इकट्ठे हो गए करें क्या, वो इंटरेस्ट के ऊपर किसके पास रखें। पर किसी का नाम हम नहीं लेते, हम जनरल बात कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि 10 रुपया जेब में भी कभी रखना नहीं, 10 की चीज 10 जेब में हो ना तो 10000 की चीज ले लो, ताकि 9099 रुपया इकट्ठा करने के लिए आपको परेशानी लगी रहे। खड़ा हुआ पानी और इकट्ठा पैसा हमेशा दुख देगा। पानी खड़ा होगा तो डुबाएगा, और पैसा इकट्ठा होगा तो हमेशा चिंता में रखेगा। आए लगा दो सेवा में, कहीं ना कहीं रखना नहीं चाहिए, अपने धंधे में कहीं भी लगाओ, इकट्ठा करो ही मत। कहने का अर्थ ये, हाँ ये है कि साधु के पास आना जाना रहना चाहिए, रहना तो ये दूसरा है कि कौन सा साधु, ऐसे साधु का संग करना चाहिए जो आपको भव बंधन से मुक्त करा के किसके चरणों में ले जाए, मतिम मति मति बुद्धि को कहते हैं, मति बुद्धि को कहते हैं। और भगवान मांगते केवल मति बुद्धि है आपसे, भगवान धन नहीं मांगते हैं। मैं अर्पित मनोबुद्धि, तेरी बुद्धि मुझे अर्पण करो। मतिम सतिम यचति वासुदेव, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण में मति लगे। और कौन सी मति? सतिम, सती किसको बोला था अभी, जो पति के साथ चली जाए, पति के जाने के बाद दूसरे को देखने के। इसलिए गंधारी को भागवत में सती कहा गया है कि उसने किसी और को देखा ही नहीं जीवन में, उसको सती कहा गया। सती का मतलब पवित्र। तो मति हमारी सती केवल वसुदेव की, सती का मतलब यहां क्या हुआ, केवल वसुदेव के अलावा और किसी को न देखे। पति परमेश्वर कहने का अर्थ क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि पति को बिठा के घर में आरती करके और कबड़ में बंद कर दोगे ये परमेश्वर है, इसका ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जैसे भगवान एक है, ऐसे आपके जीवन में ये एक पति, एक ही पति आपके लिए है, इसके अलावा और किसी को मत देखना। इसका अर्थ ये, इसका अर्थ है इसके अलावा और कहीं नहीं देखना। और यहां रहुगण बोलेगा, रहुगण को जड़ भरत आगे बोलेगा, जहां वन में भटकने की बात है, क्या बोलते हैं उसको, बना ओ वन भटकने को क्या बोलते हैं ये हिंदी भाषा में, क्या भवाटमा, भवाटमे, उसमें वहां बोलेगा कि पुरुष यहां एक तो घर में सुखी नहीं होता है, तो दूसरी स्त्री में भोग करने के, ये महाराज जड़ भरत ये बात बोल रहा है और रहुगण महाराज को बोल रहा है, कितनी पुरानी बात है। इसका मतलब तब भी ऐसे लोग ये संसार में ये काम तो तब भी होते थे। आगे श्लोकों में लिखा है तो मतिम सतिम यचति वासुदेव, बुद्धि हमारी भगवान वासुदेव में पवित्र शुद्ध होके लगे और किसी की तरफ न देखे, एक भगवान के ऊपर टिक जाए। तब तो राहुगण ने देखा कि आप ऐसी बड़ी बातें कर रहे हैं कौन। अब इस श्लोक में जड़ भरत कहता है, क्या कहता है, अहम पुरा भरतो नाम राजा,
अहम पुरा भरतो नाम राजा।
अब रहुगण महाराज तो एक छोटे से सिंध सुवेर देश का, सौराष्ट्र का राजा था, कच्छ का और सिंध का। उसने कहा कि आप कौन है? बोला मैं महाराज भरत हूँ। उसने इतिहास तो पढ़ा था कि यह तो पूरी पृथ्वी का राजा था। अब तो महाराज रहुगण, अब तो उसका जो संशय था सब समाप्त हो गया। और फिर तो कह रहा है कि मैं वही राजा महाराज भरत हूँ, तपस्या के छोटी त्रुटि से हिरण बना, तब भी मेरी भक्ति मुझे याद रही, आज इस जड़ भरत के रूप में मैं वही महाराज हूँ। अब तो रहुगण महाराज के तो बिल्कुल आंखें खुली रह गई, धरती पांव के नीचे निचल गई कि ये महाराज भरत जो इतिहास में जिसका आज हम उस जिसका नाम पढ़ रहे हैं, आज महाराज भरत कहीं से निकल के हमसे मिल जाए और कहे कि मैं महाराज भरत हूं, तो आश्चर्य हो जाएगा ना। एक आदमी हो कभी अचानक आप कहीं जाओ और मिल जाए और पता नहीं लगे, आप उसके साथ बैठो, खाओ पियो, डांटो भी कोई बात के ऊपर, और कोई आदमी आके उसको नमस्कार करे और कहे कि ये हमारे यहां का मंत्री है, तो आपको आश्चर्य थोड़ी देर में लगेगा ना। अभी उसे पालकी उठा रहा था और अभी पता लगा कि ये महाराज भरत है, तो ये बड़ा आश्चर्य हो गया ना। तो ये जब कहा तब जड़ भरत की ये बात सुनकर महाराज रहुगण को तो शरणागत हो ही गया कि आप तो हमारे गुरु हो, राजा के नाते भी हमारे गुरु ही हो, क्योंकि हम तो छोटे रजवाड़े हैं, आप तो पूरी पृथ्वी के राजा हो, आप तो हमारे गुरु ही हो। अब तो हमारे ऊपर ये कृपा करो कि हमारे को भगवत प्राप्ति में का साधन बताइए। आगे फिर भी एक ऐसा दोबारा श्लोक की आवृत्ति करते हुए जड़ भरत कहते हैं, 16वां श्लोक पढ़ लीजिए, तस्मान पढ़िए,
तस्मान नरो
असंग संग सुसंग जात,
ज्ञानास्नेह
विवक्रण मोह,
हरिम तदीह कथम श्रुतभ्याम लब्ध स्मृत्यात अति पारम अध्वन पढ़ लीजिए अनुवाद।
भक्तों की संगति मात्र से ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और
ज्ञान भक्तों के संग से पूर्ण ज्ञान, इसका मतलब अपूर्ण ज्ञान बहुत होता है तब पूर्ण लिखा है, प्राप्त होता है। कौन सा पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है भक्तों के संग में, क्या मिलता है वो दूसरी लाइन कह रही क्या बोले। हाँ,
ज्ञान की तलवार से सांसारिक मोहों को छिन्न भिन्न किया जा सकता है।
कौन करेगा संसार के मोह को छिन्न भिन्न? साधु करेगा। जब साधु के संग में जाएंगे तो साधु सीधी सी बात बताएगा कि जो तुम कर रहे हो ये तुम मोह के बंधन में फंसे हुए हो। तो तलवार क्यों कह दिया, मोह को काटने के लिए तलवार क्यों कह दिया? इसको कहते हैं ग्रंथि का छेदन, ग्रंथि का छेदन। आप लोग माता जी लोग बाल बनाते कभी उलझ जाते हैं, देखिए बाल उसमें गांठ आ जाती है ना, वो खुलती है कभी बालों की गांठ, क्या करना पड़ता है, उसने बाल कट के बाहर फेंकने ही पड़ते हैं, देखा है ना। कभी वो धागे होते हैं ना काम करते हुए आपस में उलझ जाते हैं, देखिए उसको गांठ आती है, बहुत खोलने का प्रयास करते हैं खुलते हैं नहीं खुलते, फिर क्या करना पड़ता है, काटने पड़ते हैं। ऐसे एक गांठ सबकी दिल में पड़ी हुई है, उसको कहते हैं हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि उसको कहते हैं, गांठ है हृदय में पड़ी हुई। कौन सी गांठ है? मोह की। कौन से मोह की? पुत्र परिवार। इस मोह की गांठ सबके हृदय में पड़ी है कि नहीं है? जरा अंदर देखो कैसी गांठ है, अपना बेटा अपनी पत्नी अपना भाई अपना रिश्तेदार अपना सब सगा संबंधी, इनसे जो मुंह है ये ऐसी उलझी हुई अंदर गांठ है, ये खुलने वाली नहीं, इसको गांठ बोला, इसको हृदय ग्रंथि बोला है। और आगे जब जड़ भरत ये कहेगा कि ये जगत कैसा है, ये जगत एक वन जैसा है और वन के अंदर आदमी व्यापारी जाते थे चंदन की लकड़ी लेने के लिए मानो, लेकिन उस वन के अंदर आप जाओगे तो डाकू का भी डर लगता है, हर एक के पीछे छह छह डाकू लगे हुए हैं वन में, ये पांच इंद्रियां और छठा मन ये डाकू की तरह हमारे को भटकाने का प्रयास करते हैं। और मैं वही कहने जा रहा था, जड़ भरत कहते हैं और चीता शेर और बाघ के रूप में परिवार के लोग भी आपका खून चूसते रहते हैं, घर के बड़े से आप जरा आप भागवत को ऐसे समझ लीजिए, आपसे जब आपका बेटा कहता है कि मुझे 500 रुपया दो बाबा बाहर जाना है घूमने, तो आपको कैसा लगता है, थोड़ी देर कैसे लगता है, आपका खून चूस रहा है और क्या कर रहा है, मुश्किल से कमा के आया था जबरदस्ती ले जा रहा है, और पत्नी कहती है 5000 रुपये की ये चीज आज मेरे को बाजार से साड़ी खरीद के आनी है, तो बाहर से तो भले मुस्कुराओ अंदर से तो लगता है कि खून चूस रही है कि नहीं चूस रही है। आप ईमानदार से कहो, इस सिंह की तरफ मत देखो, सच कहो, ये जड़ भरत की बात को थोड़ा ध्यान दे के देखो कि सच है कि झूठ है। हाँ, पैसा कोई मांगता है तो मानो दिल के अंदर से खून को चूसता है। और प्रभुपाद ने इसको दूसरी दृष्टि से कहा था, ये धन जो लक्ष्मी मेरे को मिलती है ये मेरे शरीर में चलने वाला खून है, कोई इसको गलत इस्तेमाल करता है तो मैं समझता हूँ मेरा खून चूस रहा है। आप भी तो ऐसे कहते हैं, ये खून चूस रहा है मेरा, पैसा कोई लेता है, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो इस जंगल के अंदर छह तो हैं डाकू, वो भी क्या करते हैं, वही पैसा खर्च कराते ना, आंख क्या बोलती है, चलो सिनेमा देखने तो पैसा ही खर्च करेंगे तब देखेंगे ना, तो एक डाकू हो गया, कान कहता है गाना सुनने चलो, कहीं नाच देखने चलो तो पैसा खर्च होगा तब ना, जीभा बोलती है खाने चलो तब भी तो पैसा ही खर्च होगा ना, तो सारे इंद्रियां डाकू हैं जो हमारा खून चूसती है। और तीन पशु पीछे तीन लिखा है, और फिर अब मच्छर काटते हैं, वन में जाएगा तो मच्छर होंगे, मच्छर कौन है? आपके घर का सुख आप कहो लेकिन दूसरे बैठे आपसे ईर्ष्या करेंगे, बैठे बैठे कहेंगे ये देखा बड़ा आदमी बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमता है, कल तो भिखारी की तरह यहां घूम रहा था, ऐसे मच्छर की तरह काटने वाले बहुत मिलते। तब जड़ भरत कहता है
पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बराबर, कभी कभी रास्ते में पहाड़ बड़ा आ जाता है वन में, उसके ऊपर चढ़ना पड़ता है और खाने के लिए कुछ नहीं, भूखा पहाड़ के ऊपर चढ़ना कितना मुश्किल होगा। और फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती बाप कहते हैं घर गृहस्थी का मतलब पहाड़ के ऊपर चढ़ना, वो भी भूखे पेट। और प्रभुपाद भावार्थ में लिखते हैं 99.9% गृहस्थी लोग सारे दुखी हैं, लेकिन समझते हैं कि हम अभी आगे चल के सुखी हो जाएंगे। हैं सारे दुखी लेकिन कहते हैं आगे चल के हम शायद सुखी हो जाएं। 99% लोग दुखी है लेकिन समझे आगे चल के हम सुखी हो जाएंगे, बस एक ये व्यवस्था हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। इसी आश्रय जीवन में जी रहे हैं लेकिन फिर ऐसे भूल भलाइयों में फंस जाते हैं, जिस काम के लिए वन में गए थे वो चीज ही हाथ नहीं आती। तो यहां लिखा है इसलिए साधु के संग से वो जो ग्रंथि हृदय के अंदर है ना, मोह की गांठ, वो मोह की गांठ कटती है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा, दृढ़ता के साथ उस गांठ को काटनी पड़ेगी। अब फिर वही प्रश्न आगे आएगा, ये शब्द लिखा है, क्या लिखा है, कथान, कथा कैसे कटेगी। ये बात एक तो मान ली आपने कि हमारे हृदय में मोह की गांठ है, ये तो मानते हो ना, किसके मोह की गांठ है, पुत्र परिवार की, धन की, यही ना। अब आगे चल के भगवान इस धरती के ऊपर कृपा करके अवतार लेकर इसलिए आते हैं कि जो संसार का मोह पुत्र में, बेटे में, पति में, घर में किया है, वही संबंध मेरे से कर लो, मेरे को बेटा बना लो, मेरे को पति बना लो, मेरे को भाई बना लो, मेरे को मित्र बना लो, वही संबंध मेरे से कर लोगे तो तेरे बंधन खुल जाएंगे, तो तेरी गांठ खुल जाए। भगवान इस धरती के ऊपर करुणा करके आते ही इसलिए कि ये मूर्ख संसार के मोह में फंस गया है, अब यही संबंध इसको मेरे से करने, ये किसको और कोई रास्ता आता ही नहीं, इसको ये संबंध ही बनाने आते हैं, तो इनको ये संबंध मुझसे बनाने का मौका दे देता हूं। तो ये जब मुझसे संबंध कर लेंगे, मेरी कथा के द्वारा जब इनका मन मुझ में लगने लगेगा तो संसार का बंधन इनका छूट जाएगा, फिर वो अपना कर्तव्य तो निभाते रहेंगे लेकिन मोह में नहीं फंसेंगे। कर्तव्य निभाना एक बात है, मोह में फंसना दूसरी बात है। कर्तव्य निभाते रहेंगे लेकिन मोह में नहीं फंसेंगे। तो वही संबंध जो संसार में हमारे बंधन का कारण है, वही भगवान को छोटा सा लाला बना के घर में बेटा बना के रख दिया और उसको ये अपना बेटा मान लिया, तो ये संबंध दुनिया से मुक्त करने वाला है। तो इसलिए भगवान इस धरती के ऊपर आते हैं, इसलिए भगवान की कथा कीर्तन, भगवान की कथा कीर्तन के द्वारा ये साधु हमारे हृदय की ग्रंथि का छेदन करते, और कोई रास्ता नहीं, वो हृदय की गांठ संसार में हमारे बंधन का कारण। तो यहां ये इन श्लोकों में जड़ भर्त की शिक्षा है, और आगे इस वन का वर्णन है जिसमें हम सब भटक रहे हैं। ये वन कोई बाहर नहीं है, ये जंगल है, इसको हम कहते हैं कांक्रीट वन, पेड़ नहीं है, बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन यही वन है। जंगल के अंदर भटके हुए व्यक्ति की तरह हम भी संसार के अंदर, संसार के वन में भटके हुए हैं, कहां जाना है, क्या प्राप्त करना है ये पता नहीं। आप यहां से ट्रेन में चढ़ो और जाओ बॉम्बे, आपके सामने एक आदमी बैठा हुआ हो, उससे आप पूछो भैया कहां जा रहे हो, बोले पता नहीं, कहां उतरोगे मालूम नहीं, कहां से आ रहे हो मैं नहीं जानता, तो आप उसके बारे में क्या कहोगे, क्या कहोगे, क्या कौन है ये, पागल है, यही कहोगे ना। अब हम आपसे पूछते हैं कि आप कहां जाओगे, कहां जा रहे हो, कहां से आए हो, क्या जवाब है आपके पास, घर से आया हूं, दुकान पे जाऊंगा, ही कहोगे और क्या कहोगे, तो आप भी उस जैसे लगते हो कि नहीं लगते हो, नहीं लगते हो, कहां जाना है। कल एक मुझे बड़ा अच्छा भक्त मिला, उसने कहा भाई मैं दोबारा संसार के जन्म मरण में नहीं आना चाहता हूं, मैं वापस भगवान के पास जाना चाहता हूं। ऐसे तो कोई लाखों में एक ऐसा सोचता है, मैं यहां नहीं आना चाहता हूं, तो मैं कहां जाना है ये तो मुझे मालूम होना चाहिए, मुझे कहां जाना है, कहां है मेरा घर। इस जंगल से निकल के मेरे घर में जाना है मुझे, या तो मैं भटक गया हूं, तो कहां जाना है मुझे? जिसको ये मालूम है कि मुझे जाना कहां है, मेरी मंजिल क्या है, वो बुद्धिमान है। कहां से मैं आया हूं ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, कहां जाना है ये महत्वपूर्ण है। इसलिए आगे रघुगण महाराज का तो जीवन सफल हो गया जड़ भरत के उपदेश से। कुछ महात्माओं का ये मानना है कि महाराज रघुगण वही हिरण था, राह महाराज रघुगण बन के आया और उस हिरण में जो वात्सल्य का प्रेम था भरत महाराज का, वो आज जड़ भरत के रूप में भी प्रेम उसका उमड़ आया, लेकिन आज उसका उद्धार करने के लिए उसको उपदेश देकर और भगवत प्रेम की प्राप्ति कराई। तो साधु वत्सल, वत्सल का मतलब बच्चे की समान अपने शिक्षा, जिसको शिक्षा देता है उसको समझता है, और करुणा और प्रेम से उसको उपदेश देके बंधन से मुक्त करता है। तो ऐसे जड़ भरत की ये शिक्षा बहुत गंभीरता से कभी पढ़ने का प्रयास करेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि इस जीवन में हमको हमारा कर्तव्य क्या है वो तो निभाना है, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है उसको नहीं भूलना है। कर्तव्य करते हुए लक्ष्य को नहीं भूलना बुद्धिमानी है, लेकिन कर्तव्य कोई लक्ष्य समझ लेना ये मूर्खता है। कर्तव्य लक्ष्य नहीं है, कर्तव्य है एक हमारे दायित्व है, वो हमको निभाना है, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है ये नहीं भूलना है। लक्ष्य है मतिम सतिम यचति वासुदेव, ये हमारा लक्ष्य है, हमारी बुद्धि शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगे, ये हमारा लक्ष्य है। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे हमने परिवार है उसका पालन पोषण करना है, अच्छी तरह से पढ़ाना है, लिखाना है, धंधा कारोबार करना, ये हमारा कर्तव्य, ये करना चाहिए, लेकिन कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए कि ये सब मेरे को करना है, क्योंकि ये मेरा मैंने ये रोल ले लिया। जैसे ड्रामे में कोई आदमी रोल लेकर रहता है तो उसको निभाना पड़ता है, चाहे वो रोल कभी नौकर का मिलेगा तो भी निभाना पड़ेगा, लेकिन जब वो नौकर का रोल करता है तो ये नहीं समझता है कि मैं नौकर हूं या मैं यहीं रहूंगा, वो ये समझता है कि मैं ये रोल कर रहा हूं, इसके बाद मेरे को वहीं जाना है जहां से मैं आया हूं। तो ये असल में हम एक असल में ये दुनिया कैसी है, रघुगण को बताते हुए कहता है जड़ भरत के रात को सोए हुए स्वप्न में आपने देखा कि मैं सोने के पहाड़ के ऊपर बैठा हूं और मेरे चारों ओर सोना ही सोना है, लेकिन जब सुबह उठता है तो चारों ओर देखता है कि वही कच्ची दीवार है जिसमें मैं सोया हुआ हूं। तो स्वप्न का सोना आदमी को रात रात में धनी नहीं बना सकता है, स्वप्न के सोने से कोई धनी नहीं बन सकता है, ऐसे ये जगत सोपने के समान है। इसलिए स्वप्न का सोना होता है, लेकिन सोपने वाला सोना असली नहीं है, इसका ये मतलब नहीं सोना ही नहीं होता है, लेकिन सोना कहीं और है, वो सोना स्वर्ण गोरंगा है, उसको प्राप्त करने का रास्ता जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक भगवान की भक्ति असंभव है। शुद्ध भक्ति केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये शुद्ध भक्ति मिल सकती है और इस धरती के ऊपर उतर के आई है, नहीं तो ये अलभ्य थी। तो स्वप्न के सोने को छोड़ के धनी बनना है तो स्वर्ण गोरंगा सोना सोने के गोरंगा की शिक्षाओं को ग्रहण करो, और उनकी शिक्षा क्या है, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जहां जाओ कृष्ण के सत्संग कथा कीर्तन का चर्चा करो और उद्गायंती बड़े उच्च स्वर में गाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये बहुत सुंदर बहुत सरल से सरल शिक्षा है, भगवान का नाम उच्चारण कर लो आपका जीवन सफल हो जाएगा। इस भगवत नाम में सारा आध्यात्मिक जगत समाया हुआ है, साक्षात भगवान और भगवान का धाम इस नाम में है। ये नाम जैसे हमारे लेने के लिए हृदय शुद्ध होता जाएगा ऐसे सारा भगवान और भगवान का धाम अपने आप अनरिवील होना शुरू हो जाएगा। इसमें सब कुछ है, इसके अलावा भाई और बाहर कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं है। हमको इसमें नहीं मिल रहा है वो ऐसे है जैसे बीज के अंदर पेड़ नहीं दिख रहा है, लेकिन उस बीज के ऊपर उसको बोना पड़ेगा, जल देना पड़ेगा, देखभाल करनी पड़ेगी, तो समय के ऊपर उसके अंदर फल आएगा। तो भक्ति का बीज नेम है, भक्ति का बीज पता क्या है, भक्ति की लता का बीज क्या है पता है, भक्ति की लता का बीज है नेम का पालन करना। जो नेम है सवेल उठना, नहाना, भगवान का दर्शन करना, मंगला का, भगवान के नाम का जप करना, भागवत का श्रवण करना, ये नेम, ये भक्ति का बीज है। नाम नहीं है बीज, नाम तो भगवान है, बीज थोड़ी है। हरे कृष्ण मंत्र भक्ति का बीज नहीं है, वो तो साक्षात भगवान है। भक्ति का बीज नेम है, नेम का पालन करेंगे। नेम का पालन कैसे करें, श्रवण कीर्तन आदि जल सिंचन करे, भगवान की कथा जल है जो भक्ति के बीज को पानी देगी, उसका सिंचन करना पड़ेगा, तो फिर ये भक्ति की लता बढ़ेगी। और इसका फल भगवान का प्रेम है, कृष्ण प्रेम इस भक्ति की लता का फल है। और वो फल कहाँ लगता है, गोलोक धाम में लगता है फल, वहां तक ये लता हमको ले जाएगी। लेकिन बीज होगा तब जता पैदा होगी ना, बीज नेम है, नेम पालन करने के बगैर बीज है ही नहीं, तो जता बीज डालो नहीं, ऐसे ही धरती को पानी देते रहो, कुछ पैदा नहीं होगा। तो पहले बीज चाहिए, बीज नेम है भक्ति के, नेम शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये बीज, ये भक्ति के नेम है। उन सब में कथा सुनना सबसे महत्वपूर्ण है, और भगवान के नाम का जप करना, भक्तों का संग करना, भागवत का श्रवण करना, और भगवान को घर में बिठा के उसकी पूजा करना। इस जड़ भरत की शिक्षाओं में गृहस्थ आश्रम को नहीं, जो केवल भोग के लिए घर बना रहे हैं उसको तो बोला है, जंगल में भटके हुए आदमी का के साथ उसको तुलना दी गई है। लेकिन गृहस्थी के लिए भगवत गीता में जहां ज्ञान की परिभाषा है, जहां पुत्र स्त्री ग्रह आदि की बात है, वहां प्रभुपाद जी भावार्थ में लिखता है, जिस घर में ये चार चीजें होती है वो घर बंधन का कारण नहीं है, वो वैकुंठ है। ये चार चीजें हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जप जिस घर में होता है, भगवान का श्री विग्रह की पूजा जिस घर में होती है, घर में जो पकता है भगवान को भोग लगता है जिस घर में, और भगवत गीता भागवत आदि शास्त्रों के ऊपर जिस घर में चर्चा होती है, वो घर जंगल नहीं है, उस घर के अंदर रहने वाले पशु नहीं है, और वहां कोई डाकू नहीं, वो वैकुंठ है, सारे कुंठ सारे दुख से मुक्त है। तो इस जड़ भरत के चरित्र से हमारे लिए शिक्षा ये है, क्योंकि हम सब यहां बैठे हैं गृहस्थ आश्रम वाले हैं, इसलिए हमारे घर में ये चार नियम का पालन करने से हम जंगल के सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे। नाम का जप, भगवान को घर में स्थापित करना, भोग लगाकर प्रसाद पाना, और रोज समय निकालकर भगवत गीता भागवत रामायण आदि जो भी पुस्तक है उसका अध्ययन करना। ये चार जिस घर में है वो घर वैकुंठ है, उस घर में कोई बंधन नहीं है, नहीं तो निश्चित रूप से घर बंधन का कारण। तो ये चार चीजें अपने साथ घरों में ले जाइए, और अपने बंधु बांधवों को जिस वन के जंगल के अंदर दुख में पीड़ित हो रहे हैं उनको सुखी करने के लिए ये चार साधन बताइए। इन चार साधनों के द्वारा पूरे विश्व के अंदर कृष्ण भावना का प्रचार होगा, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा की पूर्ति होगी, नगर नगर में, ग्राम ग्राम में, घर घर में सुख और आनंद का वातावरण भगवान के नाम के कीर्तन के द्वारा हो, ऐसी कामना के साथ आज के चार टाइम के सत्संग को यहाँ विराम देते हैं। भरत महाराज के चरित्र हमारे लिए शिक्षा, उसमें से ये चार चीजें अपने घर में करने की है, साधु के संग में बैठकर, तभी हमारा जीवन सफल होगा। हरे कृष्ण, धन्यवाद।
सचिन, राजन, खड़े हो जाओ, जाओ ढूंढ कर लाओ एक ऐसे आदमी को। जिसकी हम काली मैया
बैठे बैठे इनको माइक माइक रखो। ये महाराज इतने बड़े डाकू जोर से तो बोलो
जाओ।